आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार। जी हाँ, और आज बात भी हम करेंगे अपने तीसरे लेसन पर यानी कि थर्ड लेसन, जन माध्यमों की भूमिका एवं प्रभाव। जी हाँ, और जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपको अपने एक्सपर्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, कोर्स कोऑर्डिनेटर NIOS से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
धन्यवाद रूपा जी।
तो सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जन माध्यमों की भूमिका एवं प्रभाव, तो मैं चाहूंगी सर चर्चा को शुरू कीजिए प्लीज।
धन्यवाद रूपा जी, और इस चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अपने पंजीकृत सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले महीने मैंने बताया था कि हम लोगों ने अगस्त माह से इसको प्रारंभ कर लिया है अपना पूरा पाठ्यक्रम नए सिरे से, जिनके दो पाठों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे पाठ की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जनसंचार एक हमारा उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है जो 335 कोड के साथ आपके लिए आता है, और मैंने आपको बधाई भी दी थी और पुनः बधाई प्रेषित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा व्यावसायिक पाठ्यक्रम लिया है। इसको करने के बाद निश्चित रूप से ही आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे अपने जीवन में। और अगर हम लोग इस पाठ पे अब आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आपने अगर इसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा तो उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा जो ये आदर्श राष्ट्र है, हमारा भारतवर्ष है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं, उसमें एक निश्चित रूप से लोकतांत्रिक सरकार रहती है और हम अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सरकारों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग राज्य स्तर पे बात करते हैं तो हमारे लिए विधायक हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, और अगर हम लोग लोकसभा सदस्य के तौर पे बात करते हैं तो उनको भी हम लोग चुनकर भेजते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विधायिका यानी कि विधानसभा और लोकसभा हमारे लिए कानून बनाने की व्यवस्था करते हैं, देश को चलाने की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये लोग राज्य का संचालन करते हैं, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद देश का संचालन करने में इनका साथ देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी इकाई है वो है न्यायपालिका, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य जिला स्तर के न्यायालय, और खासी खास उन ग्रामीण इलाकों में आप देखें तो एक SDM को भी हम लोग प्राथमिक स्तर का, तहसीलदार को भी हम लोग प्राथमिक स्तर का न्यायाधीश मानते हैं, जो छोटे छोटे आपके कानूनी फैसले करता है, आपके हित के लिए बात करता है। तो अगर हम लोग इस पर देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो तीन मुख्य अंग हैं हमारे राष्ट्र के, लोकतंत्र के, उसमें एक चौथे तंत्र को हम लोग स्वतः साथ में लेकर चलते हैं, और वो चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकारिता का, जनसंचार का। तो अगर हम लोग इस पर बात आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि देशवासियों के कल्याण तथा विकास के लिए देश की सरकारें काम करती हैं, संचालन करती हैं। लोकतंत्र में जनता को जानना चाहिए कि इन तीनों संस्थानों जिनका कि हमने वर्णन किया है, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के साथ जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। और इन तीनों संस्थानों के लिए यह भी जानना जरूरी होता है कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, उनके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे हैं, जनता के हित के हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर मैंने कोई कृत्य किया है, मैंने कोई विधेयक बनाया है, मैंने कोई नियम बनाया है, मैंने कोई कानून बनाया है और उन पे अक्षरशः मैंने पालन किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अमुक नियम, अमुक कानून जनता के लिए हित कर रहा। तो प्यारे शिक्षार्थियों, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यह सब बातें बताने के लिए हमारे भारतवर्ष में या विश्व के किसी भी लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ होता है वही एक कारगर माध्यम के रूप में उभरता है, और वो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, और उसी के माध्यम से आप जान पाते हैं कि हमारे लिए लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार से काम कर रही है। तो इसका मतलब है हम यह कह सकते हैं कि आज जिन जनमाध्यमों की हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, उन जनमाध्यमों को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह सकते हैं। तो अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं इस कार्यक्रम की, और आपके पाठ के अनुरूप हम लोग इसके उद्देश्यों को जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे शिक्षार्थियों, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी जो स्व अध्ययन सामग्री है उसमें सीधे सीधे वर्णित है कि लोकतंत्र में जनमाध्यमों की भूमिका की व्याख्या करना, समाज में जनमाध्यमों की भूमिका का वर्णन करना, जनमाध्यमों की आचार संहिता के अर्थ को जानना और उसकी व्याख्या करना, साथ ही साथ जिन माध्यमों के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की गणना करना। तो हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि जनसंचार का लोकतंत्र से किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को अंगीकार करते हैं या फिर इनको पूरक करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने साथ साथ लेकर के चलते हैं, जिससे कि हम लोग लोकतंत्र के लिए जो अच्छी नीतियां, जो अच्छे कानून, जो अच्छी योजनाएं, जो अच्छी परियोजनाएं, जो अच्छे संस्थानिक निर्णय लेते हैं वो उन तक पहुँचाए जा सकें। तो सीधे सीधे हम लोग अगर आइटम नंबर 3.1 पर देखते हैं, 3.1 को अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जैसे उदाहरण ले लीजिए कि कई कई बार हम लोग को ये सूचना मिलती है कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि एक तो हमको यह गुस्सा आता है कि एक तो दाम बढ़ गए हैं, मतलब महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन जब समाचार पत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, इसलिए भारत सरकार ने मजबूरी में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा किया है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, सीधा अर्थ ये है कि अगर कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी कृत्य होता है, तो इसका मतलब है बड़े पैमाने से वो कहीं से उत्पन्न हुआ है। अब जो मैंने उदाहरण पेट्रोलियम पदार्थों का दिया है, तो वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है? वैश्विक स्तर पे हुआ है, यानी कि अरब देशों में जो क्रूड ऑयल निकलता है उसका हम आयात करते हैं, अगर वो ही हम महंगे दामों पर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भारतवर्ष की रिफाइनरियों में जब उनका हम शोधन संशोधन कर लेंगे तो उसके उपरांत वो पदार्थ हमको महंगे ही बेचने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जन माध्यम हमको उन सभी छुपे हुए तथ्यों से भी अवगत कराते हैं जिनको एक आम जनता होने के नाते हम लोग जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, हम एक अपने मोहल्ले में रहते हैं, जिले में रहते हैं या राज्य में रहते हैं, और अगर हम उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं और तमिलनाडु के किसी विशेष क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई है तो शायद हमको कोई अन्य तंत्र है जो बताएगा। सिर्फ एक ही तंत्र है उन सूचनाओं को हम तक देने के लिए, और वो तंत्र है हमारी मीडिया का तंत्र, हमारी पत्रकारिता, हमारे समाचार पत्र, हमारे चैनल्स, हमारा रेडियो, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो वो है न्यू मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो हम लोग वापस पुनः अपने इसमें सामग्री पर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सूचनाओं के प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम, जिनका वर्णन मैंने अभी किया भी है, जैसे मुद्रण माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, परंपरागत माध्यम और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, और इन सभी मॉड्यूलों के बारे में आप विस्तृत रूप से हमारी इस पाठ्य सामग्री में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो सरकारी मीडिया एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए काम करती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सरकार ने भी ऐसी कुछ मीडिया एजेंसियां या विभाग बनाए हुए हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, राज्य तथा केंद्र की सरकारें विभिन्न प्रकार से लोगों तक अपनी नीतियों की सूचनाएँ देने के लिए कार्य करती हैं। आप कभी भी अगर अपने जिले के किसी केंद्र में गए होंगे, अपने जिलाधिकारी के कार्यालय में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ सूचनाएं आपके लिए लिखी गई होंगी और उसके नीचे जो हस्ताक्षर किया होगा प्यारे शिक्षार्थियों, उस पे लिखा होगा जनसंपर्क अधिकारी। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने या जिला प्रशासन ने आपकी जानकारी के लिए बहुत सारी अच्छी नीतियां बनाई हुई हैं। एक मैं दूसरा उदाहरण भी यहां पे देना चाहूँगा, जब आप अपने जिले मुख्यालय में सरकारी अस्पताल के सामने से गुजरते हैं तो बहुत बड़े बड़े से होर्डिंग आपको देखने को मिलते हैं, उनमें कभी कभी आपने पढ़ा भी होगा कि डेंगू से रोकथाम के लिए हमको ये चीज़ें करनी चाहिए, पोलियो से बचने के लिए पल्स पोलियो की 2 ड्रॉप्स पीनी चाहिए, या वर्तमान समय में कोविड-19 से बचने के लिए हमको अपने चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए, खुले में नहीं घूमना चाहिए, लोगों से सामाजिक दूरी रखनी चाहिए। सामाजिक दूरी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सामाजिक सौहार्द को भंग करते हुए किसी से विचारों को आदान प्रदान न करें। सामाजिक दूरी का अभिप्राय है कि हम निश्चित रूप से दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्ता हो रही है उसमें शारीरिक दूरी बनाएं, जिससे कि उसके मुँह से निकले हुए कोई भी स्लाइवा यानी लार के कण आप तक ना पहुंच पाए और आप संक्रमित ना होने पाए। तो ये सूचनाएं आप तक देगा कौन? कोई व्यक्ति विशेष तो देगा नहीं प्यारे शिक्षार्थियों। तो इसके लिए आपको बहुत सारी सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे मैंने बताया कि राज्य का जनसंपर्क विभाग आपके लिए ये सूचनाएं लेकर के आता है और इन सूचनाओं को विभिन्न तरीकों से वो सरकार की नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों के तहत प्रसारित करता है। विज्ञापन तथा जनसंपर्क मॉड्यूल में इनके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अब ये समझ गए होंगे कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें तीन आवश्यक संस्थान हैं, उनका हमने वर्णन किया है। लेकिन इन संस्थानों के साथ साथ हम यह भी अब जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जनमाध्यमों के कार्य तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तो जनमाध्यम एक व्यक्ति तथा समाज के लिए सूचना के विशाल स्रोत होते हैं प्यारे शिक्षार्थियों। इससे पहले कि हम लोग इस भाग में आगे पढ़ें, हम लोग को ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से ये जनमाध्यम समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था कि जब COVID-19 की सिचुएशन चल रही है इस समय वैश्विक स्तर पर, तो यही जनमाध्यम हमको नित प्रति जागरूक करते रहते हैं कि आप मास्क पहने, निश्चित अंतराल पर अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, और साथ ही साथ दो व्यक्तियों के बीच में जब कभी संवाद होता है तो एक निश्चित दूरी हमको बना के रखनी है, जो हमारे लिए स्थानीय प्रशासन ने नीतियां बनाई हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश नोएडा, जिस क्षेत्र में हमारा ये सामुदायिक रेडियो और मुक्त विद्यावाणी स्थापित है, वहां पर यह है कि रविवार और शनिवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, तो उसका हमको पालन करना चाहिए। और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में धारा 144 भी लगाई जा रही है कि जिससे बहुत सारा जनसमुदाय इस जगह इकट्ठा ना हो पाए, तो उससे भी हमको बचना चाहिए। और ठीक यही काम जनमाध्यमों की भूमिका तथा प्रभावों के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, जिसका कि निरूपण करने के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार होता है और विभिन्न प्रकार के जनमाध्यमों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए अपने जनसंपर्क विभाग के द्वारा वो इन सभी सूचनाओं को आप तक पहुँचाता है। अब आप लोग निश्चित रूप से सोशल नेटवर्किंग साइट्स और अन्य माध्यमों से जुड़े होंगे, तो आप देखिए कि राज्यों की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से आपको ऐसे बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते रहते हैं। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जनमाध्यम परिवर्तन लाने में सहयोग कर सकते हैं। अब परिवर्तन लाने में सहयोग कैसे कर सकते हैं? जब मैंने बताया कि COVID-19 की सिचुएशन है और हमको मास्क पहनना है और हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा बार बार ऐसी सूचनाएं हमको दी जा रही हैं कि मास्क पहने, घर से बाहर बिना मास्क पहन के ना निकलें, तो इसका मतलब है कि जब जनमाध्यम परिवर्तन लाने में सहयोग कर सकते हैं तो हमें इनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग पोलियो के बारे में बातें करते हैं, HIV/AIDS के बारे में बातें करते हैं, और इन सभी चीज़ों से मुक्त होने के लिए, भारतवर्ष को स्वच्छ करने के लिए और राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के जनमाध्यमों का प्रयोग करते हैं प्यारे शिक्षार्थियों। अब कई कई बार हमारे मन में प्रश्न यह भी आता है कि परिवर्तन मुख्य रूप से होता क्या है? तो परिवर्तन का अर्थ है कि जो भी वर्तमान स्थितियां हैं वो पहले से और अच्छी हो जाएं। इसका सीधा उदाहरण यह है कि जब हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो आज के 20 वर्ष पहले भारत में जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय थी, उसके अनुपात में क्या आज वर्तमान परिस्थितियों में 2020 में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, इसका आकलन हमें करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, या मैं एक उदाहरण ये देता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी आज से 20-21 वर्ष पहले 7-7.5 हजार रुपए वेतन पाते थे, आज वो 70-80 हजार रुपए वेतन पा रहे हैं। और जिस मजदूर को दैनिक वेतन भोगी मजदूर होने के नाते सिर्फ 75 रुपए मिलते थे या 45 रुपए मिलते थे, आज उसको 272 रुपए का भुगतान सरकारों द्वारा किया जाता है न्यूनतम स्तर पर। तो इसका मतलब है कि जनमाध्यमों की भूमिका तथा प्रभावों के चलते समाज में परिवर्तन आए हैं, समाज को नित्य बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है, सक्षम साधनों का प्रयोग किया गया है। टेलीविज़न और रेडियो तो पुराना हो गया, अब तो नए जो संसाधन आ गए हैं जिसमें इंटरनेट का विशेषता प्रयोग किया जाता है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हम जनता तक पहुंचते हैं और सुदूर जनजातियों के उस समूह तक भी आज पहुंचना प्रारंभ हो गया है जो कि आज के 20 वर्ष पहले हमारे संपर्क में नहीं थे। तो इसका मतलब है प्यारे शिक्षार्थियों कि हम यह भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जनमाध्यमों ने विश्व को छोटा बनाया है और सभी को करीब लाया है। मतलब ये था कि आज से 10 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले अगर हम लोग इंग्लैंड न्यूजीलैंड या कनाडा की बातें करते थे तो हमको लगता था कि सब बहुत दूर देश हैं, हम शायद कभी इनके बारे में अधिक जानकारियाँ ना ले पाएँ। लेकिन आज आप कुछ बटन दबाते हैं अपने मोबाइल के और सीधे सीधे बैठे सजीव प्रसारण में अपने मित्रों से अपने संबंधियों से वार्ता कर पाते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके हाल समाचार ले पाते हैं। इसीलिए आपको हम लोगों ने अपने स्वमुद्रण सामग्री में वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज एक शब्द सुझाया है, जिसके माध्यम से हम यह कहने का प्रयास करते हैं कि संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह है और हम लोग एक छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं। अगर हम लोग छोटी सी संकल्पना करें कि सभी राष्ट्र अलग अलग प्रकार के राज्य हैं और ये सभी लोग मिलकर एक विश्व को एक गांव बनाते हैं, इसका मतलब है कि दुनिया सिकुड़ रही है। विभिन्न प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करके हम आज सभी तक पहुंच सकते हैं, चाहे हम कनाडा की बात करें चाहे हम जापान की बात करें, आज हम अभी बैठे बैठे किसी से बात कर सकते हैं, अपने मनोभावों को साझा कर सकते हैं, अपने संदेशों को भेज सकते हैं, और तो और वेबिनारों के माध्यम से ई सम्मेलनों के माध्यम से हम जुड़ करके अपनी बातें भी साझा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्यारे शिक्षार्थियों जिस प्रकार से मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से हम यहाँ नोएडा में बैठ करके सुदूर जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु गुजरात तथा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर पाते हैं और वो वैश्विक रूप से बैठे हुए पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से। और साथ ही साथ जो श्रोता हमारे सामुदायिक रेडियो पर जुड़ते हैं तो वो हमारे नोएडा के क्षेत्र में इसको सुन पाते हैं। और कई कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये जो जनमाध्यम है ये उत्पादों के वितरण को भी प्रोत्साहित करते हैं। अब उत्पादों या सेवाओं के वितरण को भी प्रोत्साहित करते हैं तो मैं यहाँ पे ये भी उदाहरण दे सकता हूँ कि क्या कुछ शिक्षार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने NIOS में प्रवेश इन कार्यक्रमों को सुनकर भी लिया होगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक नवविवाहिता है जो बलिया गोरखपुर से विवाह करके खोड़ा में निवास करने के लिए आई है और उसको अपनी शिक्षा सतत जारी रखनी है और उसने यह प्रोग्राम सुना हमारा, उसके बाद उसने ऑनलाइन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में प्रवेश लिया और सुगम तरीके से सेल्फ लर्निंग मटेरियल का अध्ययन करते हुए अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम करते हुए वो अपनी शिक्षा को सतत रूप से जारी कर पाई। और हमारी वर्तमान जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें सीधे सीधे इसका प्रावधान किया गया है कि अब अपने साथ आप अपने वर्षों को संचय भी कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने BA फर्स्ट ईयर पास कर लिया है किसी अमुक वर्ष में और उसके बाद 2 वर्ष का आप गैप दे देते हैं तो चौथे वर्ष पुनः आप सेकेंड ईयर करके आप ना पीछे अर्जित किया हुआ फर्स्ट ईयर साथ में जोड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नवीन परिदृश्य में हम लोग देखते हैं कि जन माध्यमों की भूमिका अगर सही रहे तो हम लोग कई सारी चीज़ों को साथ में लेकर चल सकते हैं। लेकिन प्यारे शिक्षार्थियों, कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि क्या ये जन माध्यम सही ठीक प्रकार से हमारे लिए काम करते हैं। कई बार राजनीतिज्ञ, नौकर साहब या पुलिस के भय से ये लोग अपने कर्तव्यों से डेविएट हो जाते हैं। कई बार कुछ गलत गतिविधियों के चलते ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। कई कई बार हम लोग देखते हैं कि मीडिया ट्रायल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आप तो हमारे पीछे मीडिया ट्रायल कराते हैं, हमको ट्रोल कराते हैं, हमारे लिए विशेष तौर से आपको किसी ने उद्वेलित किया है, हमारे पीछे आप पड़ गए हैं। कई कई बार आप देखिए कि इन शक्तियों का दुरुपयोग करके पत्रकार या मीडिया कर्मी अपने लिए जो है मुख्य पेशेवर होने के नाते अपने लाभ को, अपने लिए लाभ के कुछ काम कर लेते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि क्या अन्य पेशों की तरह मीडिया की भी कोई आचार संहिता होनी चाहिए, मीडिया पर भी कोई नियंत्रण होना चाहिए, मीडिया पर भी कोई अंकुश होना चाहिए, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था बना दी जाए कि मीडिया के द्वारा की गई रिपोर्टिंग, किया गया पब्लिकेशन, किया गया साक्षात्कार किसी आचार संहिता को पालित करता हुआ आगे बढ़े, जिससे कि हम लोग व्यक्ति विशेष की निजता का ध्यान रखते हुए किसी संस्थान या सरकारी संस्थान के नियमों का अनुपालन करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो कुछ प्रकार की मैं यहाँ पर जनमाध्यमों की आचार संहिता का वर्णन करना चाहता हूँ और जिनके बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे कि वो कौन सी आचार संहिता है जिनका पालन करके हमारे पेशेवर मीडिया कर्मियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग छोटा सा विराम लेते हैं शिक्षार्थियों और पुनः उपस्थित होते हैं।
बिल्कुल शिक्षार्थियों, श्रोता बने रहिए, सुनते रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुख्य विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी एफ एम 91.2 मेगाहर्ट्ज़। लौटते हैं छोटे से अल्पविराम के बाद।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण पिछड़े असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार।
यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं।
कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम।
न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं।
अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-1800-9393 पर।
शिक्षार्थियों, श्रोताओं पुनः स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी एफएम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो जैसा कि हम भी बात कर रहे हैं, हम सीनियर सेकेंडरी में मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पे और हमारा टॉपिक है जन माध्यमों की भूमिका एवं प्रभाव। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, कोर्स कोऑर्डिनेटर NIOS। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद रूपा जी।
तो सर प्लीज,
हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग जन माध्यमों की आचार संहिता पे थोड़ी सी चर्चा करें और कौन से वो दिशा निर्देश हैं जिनको कि हम पालन करते रहें तो एक अच्छे पेशेवर मीडिया कर्मी के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि भारतीय प्रेस परिषद का भी वर्णन आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारतवर्ष में हम लोगों ने ऐसे संगठन भी बना रखे हैं, ऐसे परिषद भी बना रखे हैं जो इनके लिए आचार संहिताओं का निर्माण करती है कि कोई मीडिया कर्मी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमेशा बंधा रहे और साथ साथ चले उनके और समाज के हित में पत्रकारिता करे, रिपोर्टिंग करे और प्रकाशन करे। तो जो आचार संहिता हैं उनका मुख्य रूप से जो हम लोगों ने अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल में वर्णन किया उन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुद्धता की। आप देखिए, शुद्धता का अर्थ ये है कि जो भी सूचनाएं हमको उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो भी सूचनाएं मीडिया कर्मियों द्वारा अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट पे उपलब्ध कराई जा रही हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और उनका कोई ना कोई अच्छा आधार होना चाहिए। कई कई बार हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी समाचार भी चल जाते हैं जो कि गलत होते हैं, आधारहीन होते हैं, बेसलेस होते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या संस्थान या देश के हित पर जब क्षति पहुंचाने के लिए कोई रिपोर्टिंग हो तो वो अच्छी नहीं है। तो प्रत्येक मीडिया कर्मी के लिए आवश्यक है कि वो शुद्धता के साथ साथ यह भी ध्यान में रखे कि जो भी जानकारी उसको जिस माध्यम से मिल रही है उसका वर्णन वो उतना ही करे जितना कि उसने अपनी आंखों से देखा है या अपने विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त किया है। तो जब विश्वसनीयता की बात आती है, विश्वसनीय स्रोतों की बात आती है और सूत्रों की बात आती है, तो आप देखिए कि विश्वस्तता जो है एक मीडिया कर्मी के लिए बहुत ही आवश्यक आचार संहिता है। एक मीडिया कर्मी विभिन्न स्रोतों के द्वारा अपनी सूचनाओं को एकत्र करता है। अब देखिए, एक ही पत्रकार है, वो अपने क्षेत्र में हर जगह तो एक समय पर उपलब्ध नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ है कि वो अपने लिए सूत्रों का निर्माण करता है। वो सूत्र चाहे पान वाले हों, चाहे सिपाही हो या जनसामान्य के लोग हों, तो इसका मतलब है उन दोनों का आपस में इतना अच्छा विश्वास हो कि जो भी सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं, आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, उनकी विश्वसनीयता बहुत ही उन्नत किस्म की होनी चाहिए, यानी कि 100% वो सूचनाएं सही होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे स्रोत ने हमको कुछ सूचनाएं दे तो दी, लेकिन हो सकता है कि उस सूचना के प्रकाशन के बाद, उस सूचना के मीडिया में आने के बाद कुछ गलत तत्व उस स्रोत के पीछे भी पड़ सकते हैं। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जो मुंबई की घटना देख रहे हैं, उसमें देखिए कि जो स्रोत हैं उनके पीछे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक मीडिया कर्मी के तौर पर हमारा यह भी दायित्व तो होता है कि हम अपने स्रोतों का बचाव करें, अपने जिन सूत्रों से हमको जानकारी या सूचनाएँ मिल रही हैं उनकी रक्षा करें। तो इसका अर्थ है कि एक सरकारी अधिकारी अगर अपने विभाग से कोई अगर सूचना उपलब्ध कराता है मीडिया कर्मी को, तो उस मीडिया कर्मी का धर्म हो जाता है कि उस सरकारी अधिकारी को कभी उसका नाम प्रकाशित ना करे, उसके नाम को उजागर ना करे, बस वो बताए कि ये सूचनाएं हमको प्राप्त हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो भारत में कई सारे ऐसे कानून भी हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग एक गोपनीयता की बात करें, तो गोपनीयता का भी अधिकार होता है। एक पत्रकार को किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसका आशय यह है कि एक सामान्य नागरिक के निजी जीवन की बातें पत्रकार को कभी जनता के मध्य किसी भी माध्यम के साथ में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लेखनी है पत्रकार की, जो समाचारों का संकलन वो करता है, उनसे किसी भी प्रकार जाने अनजाने में भी हिंसा को नहीं भड़काना चाहिए। कई कई बार हम लोग धार्मिक तथ्यों को बीच में ला करके उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे हम लोग दो विपरीत धर्म वाले व्यक्तियों को, व्यक्ति समूहों को आपस में हिंसा के प्रति उद्वेलित कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनमाध्यमों को जनता को हितों में ध्यान में रखना चाहिए, जनमाध्यमों को जनता के हितों में ध्यान में रखते हुए ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन नहीं करना चाहिए कि जिससे वो हिंसा के लिए प्रेरित हो या हिंसा के लिए उनको उकसाया जाए। और साथ ही साथ हम लोग देखें कि कभी भी हिंसा को महिमा मंडित भी नहीं करना चाहिए कि हिंसा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग जो जिस देश में रहते हैं, हमारे राष्ट्र की तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग शांत और शुद्ध चित्त के साथ कार्य करते हैं, और साथ ही साथ जितने हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके लिए भी हम लोग हमेशा अच्छी निगाहें रखते हैं। हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है, तो उस राष्ट्र की जो हमारे राष्ट्र की गरिमा है उनका भी हमको अनुपालन करते रहना चाहिए। तो इसका मतलब है जब हम लोगों ने गरिमाओं की बात की है, उनके अनुपालन की बात की है, तो हमारे जो जनमाध्यम हैं उनमें कुछ ऐसा ना लिखा जाए, कुछ ऐसा ना प्रदर्शित किया जाए, ना प्रसारित किया जाए जो कि अशिष्ट हो या अश्लील हो। इसका अर्थ है कि एक हमारी आचार संहिता यह भी है जनमाध्यमों की कि हम लोग को अशिष्टता से बचना चाहिए, अश्लीलता से दूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक मत के लोग अलग अलग रहते हैं और एक साथ सामुदायिक सौहार्द बना के इस देश का निर्माण करते हैं, और हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हुए इस बात को आगे बढ़ाया गया है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और कदाचित शिक्षार्थियों आप यह मान के चलें कि वैश्विक धरातल पर भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो सबसे अनूठा है, सबसे विशिष्ट है, और विभिन्न प्रकार के धर्मों को, विभिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायियों को साथ में लेकर के चलता है और सबको अपने धर्मों की जो परंपराएं हैं, जो उनके विधि विधान हैं, उनके साथ उनको यहाँ पे रहने का अधिकार देता है। तो हमको यह भी देखना चाहिए, हमको यह भी विश्वास रखना चाहिए कि धर्म के वर्गों में उनके विषय में कोई नकारात्मक लिखावट न की जाए हमारे जनमाध्यमों के द्वारा, या उनका प्रसारण न किया जाए जिससे कि वो हमारे लिए कोई भी प्रकार की समस्या खड़ी करें, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हो या मारकाट हो। ऐसा कोई भी काम हमको नहीं करना चाहिए जनमाध्यमों के द्वारा कि जो हमारी आम जनता है वो उससे भड़के और उनका मन कहीं और दूसरी तरह पे लग जाए। तो इसका मतलब है सीधे सीधे कि हम देखते हैं कि जो जनमाध्यम है प्यारे शिक्षार्थियों, उन जनमाध्यमों का हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है वो प्रभाव सकारात्मक प्रभाव हैं। अगर उनका नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो भी कुछ हो सकते हैं। तो आइए हम लोग छोटी सी एक विवेचना कर लेते हैं कि जनमाध्यमों के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं और नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बारी बारी करके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जनमाध्यम ऐसे समाचार तथा सूचनाएं दें जो कि लोगों के लिए उपयोगी हों, तो ये तो हो गया सकारात्मक प्रभाव। अगर हम इसका नकारात्मक पक्ष देखते हैं तो इसमें सीधा सीधा हम देखते हैं कि जनमाध्यमों द्वारा देश की परंपरागत संस्कृति पर कोई विपरीत प्रभाव वाली सूचनाएं नहीं दी जानी चाहिए। जनमाध्यम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, ये इसका सकारात्मक प्रभाव है। मनोरंजन जनमाध्यमों का मुख्य अंग बन गया है आजकल। इसके माध्यम से प्राथमिक उद्देश्य सूचनाएं तथा शिक्षित करने की जो बातें हम करते हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसका मतलब ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। एक और सकारात्मक प्रभाव लेते हैं कि जनमाध्यम एक लोकतांत्रिक राज्य को प्रभावशाली ढंग से काम करने में सहायता करते हैं। जनमाध्यम जनता को सरकार की नीतियों योजनाओं के विषय में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि वे किस प्रकार से ये योजनाएं लोगों के लिए प्रस्तुत करें कि वो उपयोगी रहें, और जनमाध्यमों के द्वारा जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है। और साथ ही साथ अगर हम नकारात्मक इसका प्रभाव देखते हैं तो जनमाध्यमों में कई न कई बार न चाहते हुए भी हिंसा को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ टेलीविजन तथा सिनेमा पर दिखाए गए कार्यक्रमों से बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती हुई पाई गई है। जनमाध्यम लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, जनमाध्यम लोगों में परिवर्तन वाले विकास की ओर उद्वेलित कर सकते हैं, समाज में अच्छा परिवर्तन हो, सकारात्मक परिवर्तन हो। जनमाध्यमों ने दुनिया को लोगों के साथ एक रूप से निकट ला दिया है। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग आज किसी भी से बात कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा में बैठा हो, जापान में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, तो हम लोग दूरस्थ माध्यमों का प्रयोग करके उनसे बात कर सकते हैं। जनमाध्यम विज्ञापन द्वारा व्यापार तथा उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं, कि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जो हमारा जनसंपर्क का इसमें पार्ट है, जो हमारे एडवर्टाइजिंग के पार्ट हैं विज्ञापन वाले, उनमें आप पढ़ेंगे कि इन्हीं विधाओं का प्रयोग करके कैसे हम लोगों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि जनमाध्यम एक देश की राजनीतिक व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोगी भी होती है। इस कार्यक्रम के पहले ही हमने इसका वर्णन किया था कि किस प्रकार से हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उन सभी को एक धरातल पर लाकर समन्वय स्थापित करते हुए जनता के हित में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देने का कार्य जनमाध्यमों के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं की भूमिका और प्रभावों के चलते हमारे भारतवर्ष की या किसी भी राष्ट्र की जनता अपने द्वारा चुनी गई सरकारों के कार्यक्रमों के बारे में बेहतर ढंग से जान सकती है। तो मुझे लगता है कि प्यारे शिक्षार्थियों आज हमने अपने पाठ 3 को बखूबी अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज का ये कार्यक्रम आपने सुना शिक्षार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।